तुम में से कोई भी ये दुआ ना करे कि खुदा हमें फितनों में मुब्तला ना करे, क्योंकि फितने इलाही इम्तिहान का हिस्सा हैं। लेकिन खुदा से ये दुआ जरूर करो कि खुदा तुमको मुजल्लात फितन में मुब्तला ना करे। मुजल्लात फितन वो फितने जो इंसानों के इजाद करता है, वो फितने जो आपको खुदा से भी दूर कर दें, जैसा कि आजकल के फितने। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? दूसरों ने हर जहद हर सिम्त से तजिया तहलील की, तुम भी उठो दीनी लिहाज से तजिया तहलील करो। वाकयात की आंधी से उठने वाली धुंधलाहट ने हिला कर रख दिया और बहुत सारे चकरा गए। आखिर उस जमान में फितने बहुत ज्यादा पेचीदा होते जाएंगे, बहुत ज्यादा पेचीदा। क्या हमारा दुश्मन हाथ पर हाथ रखे बैठा है और कुछ नहीं कर रहा? दुश्मन ने चेक किया है, अपनी गलती को दर्क किया है और अब अपने अगले काम को अंजाम देने की तैयारी कर चुका है। हालात और वाकयात के बहरान से जरा सा जलजला क्या आ गया, बहुत सारे इनकलाबी भी दुश्मन की सजाई हुई राह पर गलत को सही और सही को गलत कहने लग गए। इनकलाबी से मुराद वो लोग जिन्हें हम सख्त तरीन हालात में चिराग राह समझते थे। और यहाँ पर दुश्मन को पता चलता है कि अच्छा, ये भी मुमकिन है कि अच्छों को भी अच्छों से अलग किया जा सकता है। सिर्फ एक रात पहले ही लोग मौला अली के घर पर धावा बोल रहे थे। उसी रात की सुबह तलाव जुबैर मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आकर अपना हिस्सा मांगते हैं। मौला ने इनकार कर दिया। दूसरे दिन दोनों बसरा की तरफ चले गए और फिर फितने, हंगामे और जंग, जंग सफीन और नेजों पर कुरान। अब क्या करें? कुरान और वो मुकद्दस नुमा लोग जिनके माथों पर सजदों के निशान, जब उनसे कहोगे कि इस कुरान को जो नेजों पर है सरफे नजर कर दो, तो कहेंगे नहीं जनाब, ये कैसे मुमकिन है। हम यहाँ बैठकर अभी बहुत आराम से कहते हैं कि अगर हम वहाँ होते तो यूं करते और वो करते। मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का अपने इनकलाबी जवानों से कम तकाजा ये है कि गहरी फिक्र तदब्बुर के हामिल हों, हवादिस की आंधी में चकराने न लग जाएं, बल्कि दूसरों के लिए रास्ते का चिराग बने जो शुभात के अंधेरों में भटक रहे हैं। एक तरफ खुदावंद अपनी सुन्नत के बरखिलाफ कोई काम नहीं करने वाला और दूसरी तरफ दुश्मन भी बेहतरीन प्लानिंग के साथ मैदान में आया है। और इधर अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने इनकलाबी इकदामात से किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि दीनी अकदार के साथ खेला नहीं जा सकता। अब बीच में रह गई उम्मत जो शकूक व शुभात का शिकार है। आप अपने इमाम को किस जाविये से देख रहे हैं और दुश्मन को किस जाविये से देख रहे हैं? दुश्मन ने दसियों नकाब पहने हुए हैं। इन मसाइल के बारे में आप अजीजों के सामने मौला अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का एक वाकया नहजुल बलागा से बयान करता हूँ। रहबरे मौज़म ने नहजुल बलागा से अपनी बेहतरीन आशनाई की बुनियाद पर दुश्मन की हालिया संगीन फितनों पर मबनी चालों समेत आइंदा की भी कई चालों को महसूस किया और दुश्मन के हाथ पांव साजिशी जाल बुनने से काट दिए। अगर कोई ये कहे कि उनकी शोहरत में बाज इनकलाबियों के नज़दीक इन इकदामात की वजह से कमी वाकई हुई है, तो हम क्या करें? भला बंदे खुदा लोगों के दरमियान अपनी शोहरत के लिए काम करता है? वो बंदे खुदा हैं और अपनी जिम्मेदारी पर अमल कर रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुस्तहकम व तगीर नापजीर उसूल हैं जिनके तहत वो सारे काम अंजाम देते थे। अब सबसे पेचीदा और हैजान अंगीज वाकया ये है, इमाम अली अलैहिस्सलाम न जनाब उस्मान के खिलाफ कयाम करते हैं और न उनके मुकाबले खामोश बैठते हैं। जब जनाब उस्मान के दौरे खिलाफत में करप्शन अकरबा परवरी उसूलों की खिलाफ वर्जी हुई तो इन्हीं लोगों ने धावा बोल दिया और खलीफा वक्त को कत्ल करने निकल आए। तीसरे खलीफा के खिलाफ हर लिहाज से बहुत बड़ी बगावत ने सर उठा लिया। इन सब हवादिस में पता है इमाम अली कहाँ खड़े थे? तने तन्हा खड़े तीसरे खलीफा का दिफा कर रहे हैं, बगावत करने वालों के मुकाबले सीना सिपर खड़े हैं और कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि खलीफा को कत्ल करो। फिर क्या होता है? इनकलाबी आते हैं, कहते हैं अगर हमारे साथ नहीं हो तो कम से कम हमारे रास्ते से हट जाओ ताकि हम अपना काम तमाम कर सकें। ये जालिम है, लोगों ने खुद से इसके खिलाफ बगावत की है, तुम्हें क्या पड़ी है इसका दफा करने की? खुतबा नंबर 240 में मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इब्ने अब्बास से जब बगावत अपने औज पर पहुंच चुकी थी, फरमाते हैं कि इब्ने अब्बास खुदा की कसम, मैंने उस्मान का इस हद तक दिफा किया कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं मैं गुनाहगार शुमार न हो जाऊं। अब कहाँ है वो इनकलाबी जो इन सब बातों को तज्जिया तहरीर करें? मौला चाहते तो एक सफर पर चले जाते और जो हो रहा था होने देते, कत्ल होता होने देते और फिर वापस आ जाते। वस्सलाम। बाज़ इनकलाबी अपनी महफिलों में अजीब तरह की बातें करते हैं कि आका की शोहरत में कमी आ रही है वगैरह वगैरह, लेकिन जवाब में क्या, सिर्फ खुदा के लिए अपना काम अंजाम दे रहा हूँ। अब यही लोग जिनको चंद लोगों ने बगावत पर उकसाया और जनाब उस्मान अंजाम पाया, यही लोग अपनी कमाल मोहब्बत के साथ हजरत अली के दरवाजे पर आ गए और कहने लगे कि अब सिर्फ हैदर अमीर अल-मोमिनीन और बस अब से आप हमारे खलीफा हैं। हमने माजी में बहुत गलतियां कर ली। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने हुकूमत तश्कील दी। अचानक मुआविया ने एक बार फिर इस मुआशरे के सादा अंदीश जवानों से फायदा उठाने का सोचा। बार बार अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को खतूत लिखे जा रहा है। खतूत किस लिए? ताकि उन्हें साथ साथ मुआशरे के सामने दिखा सके, नशर करता फिरे। इन खतूत में आखिर क्या लिखा था? लिखा था कि ऐ अली, तुम खुद कहते हो कि उस्मान के मुदाफे और मददगार थे और उसके खिलाफ बगावत के मुखालिफ थे। ठीक, उस्मान का कत्ल हुआ है जो जुल्म है। उसने जो जुल्म किया उसका कसास कत्ल होना न था। ठीक, अब तुम खुद पूरे मुआशरे के खलीफा हो। तुमने अपनी खिलाफत के पहले दिन खुतबा नंबर 16 नहजुल बलागा में ये बात कही कि हमारा नारा अदालत है। ठीक, तो बिस्मिल्लाह करो, ये उस्मान के कत्ल की फाइल है, इसे पाए तकमील तक पहुँचाओ और कातिलों को सजा दो। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, गेंद तुम्हारे कोर्ट में है। उस्मान के कातिलों पर अदालत जारी करो, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था कि गलत कत्ल किया गया। माविया के इस हीला उचाल ने असर दिखाना शुरू कर दिया। अपने ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ए अली, माविया सही तो कह रहा है, उस्मान के कातिलों पर हुक्म जारी करो ताकि माविया को मुंह तोड़ जवाब भी रसीद हो जाए और ये साबित हो जाए कि हमारे लिए अदालत की राह में सब के सब बराबर है। लेकिन ये नासमझ लोग जो ये दर्क नहीं कर पा रहे कि क्यों अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम कत्ल उस्मान का केस शुरू नहीं कर रहे। अपने ही लोगों ने दबाव डालना शुरू कर दिया। बिलाखिर मौला अली ने नहजुल बलागा में मौजूद खुतबे में मजबूर होकर आवाम से खिताब किया और बयान फरमाया कि तुम समझते क्यों नहीं हो, मुझ पर दबाव मत डालो, मुझे मेरा काम मेरे तरीके से करने दो। आखिर माविया अदालत तलब था कब जो अभी बड़ा अदालत का दावेदार बनता है? आखिर समझते क्यों नहीं हो कि माजरा कुछ और है? फिर मौला कहते हैं कि पता है वो शातिर है और ये अजीम मजमुआ लोगों का जिसमें मौजूद तमाम कबाइल पार्टियां शख्सियात वगैरह सबके हाथ अक्सरियत के हाथ कत्ल उस्मान में रंगीन है। माविया चाहता है कि सबसे पहले मैं ये केस शुरू करूं और इब्तिदा ही से इन सब लोगों को अपने खिलाफ कर लूं और ये लोग मेरे खिलाफ बगावत पर खड़े हो जाएं और इस्लामी निजाम तहस नहस हो जाए। मैं किसी भी सूरत में एक केस की खातिर इस्लामी निजाम को कुर्बान नहीं कर सकता। लेकिन लोग हैं कि समझना ही नहीं चाह रहे और मुसलसल एक ही बात कि अगर अदालत के जरा में मसलहत तो इस्लामी निजाम का क्या फायदा। मैं यहाँ मासूम मिनल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ। जब तक जिंदा रहे, ना सिर्फ कातिली ने उस्मान का केस शुरू नहीं किया बल्कि उनका नाम तक अपनी जबान से जारी नहीं किया, जिसकी वजह से दुश्मन को गहरा सदमा पहुंचा और उसके ख्वाब चकनाचूर हुए। मगर दूसरी जानिब अपनों ही ने इसी बात की खातिर अमीर अल-मोमिनीन को बहुत दुख पहुंचाए। सादा अंदीश लोग न जाने क्यों नहीं समझ पाते कि वो अदालत जो फितनों का गला घोंट दे और वो अदालत जो फितने बर्पा कर दे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामी निजाम की बका की मसलहत हर शरई हुक्म से बालातर है, मगर ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। वो हाकिम शरा वहाँ ऊपर बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस्लाम पर सही तरीके से अमल करवाए। आज रहबर मौजम की सबसे बड़ी मजलूमियत यही है कि जब अपनों को चाहिए था कि आगे बढ़कर रहबर के हकीमाना फैसलों की हिमायत करते, उनका दिफा करते, उल्टा मुखालिफत शुरू कर देते हैं कि हम तो पहले से ही इन फैसलों के मुखालिफ थे। ये है वो आखिर जमान का फितना जिसके बारे में रहबर मौजम ने फरमाया था कि बड़े फितने अभी आना बाकी हैं। आप क्या समझते हैं कि अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जब खवारिज को कत्ल कर रहे थे तो बहुत खुश थे? नहीं, बल्कि गिरिया किया करते थे, नहरवान में तलवार चलाते जा रहे थे और साथ साथ रोते जा रहे थे। कहते थे किस कदर अफसोस का मकाम है कि ये लोग नहजुल बलागा में आया है कि तलहा के जनाजे के सामने से गुजरते वक्त नहायत अफसरदा थे। फरमाया, मेरी ये ख्वाहिश ना थी कि तलहा के जनाजे को इस तरह यहाँ खाक आलूद देखूं। उसने इस्लाम की बहुत खिदमत की थी, लेकिन क्या करूं कि उसकी बेबसीरती ने उसे हलाक शुदगान में शामिल कर दिया। लोग रहबर मौजम के लिए कहते हैं कि इन हवादिस में आगा इतने लोग मारे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। नहरवान में एक दिन में 4000 नमाज शब पढ़ने वाले मारे गए थे। अगर तुम उस दिन होते तो क्या कहते सिवाय अपनी बेबसीरती के? नमाज शब पढ़ने वाले वो हैं जिन्हें ना मकाम चाहिए, ना पैसा, ना दुनिया। वो तो खुदा के लिए मौला अली से जंग लड़ रहे थे। अब मेरे भाई, ऐसों को क्या किया जाए? इन फितनों का हल बहुत आसान है अगर ये काम अंजाम दे लें। सबसे पहले अपनी बसीरत को जितना हो सके गहरा और मजबूत करें। दूसरा, माशरे के इमाम और रहबर की राह पर इस्तकामत करें। तीसरा, हक को तलाश करें, अशखास के पीछे मत जाएं। अशखास इधर उधर होते रहते हैं, हक अपनी जगह पर रहता है। और अपनी इस गलती की भी فیصلہ کریں کہ ہمارے اور معاشرے کے رہبر و امام کی نسبت تطبیقی نہیں ہے بلکہ یہ نسبت اطاعت کی ہے. یعنی کیا؟ ہم میں سے بعض انقلابی متدین دیندار جب رہبر و امام کوئی ایسا موقع بیان کرتے ہیں کہ جس کے ہم بھی حامی تھے تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ دیکھا رہبر نے کیسا جواب دیا, مخالفین اور دشمن سب کے دانت کھٹے رہ گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب کوئی ایسا موقع بیان کریں جو ہماری مرضی کے مخالف ہو تو فوراً کہا جاتا ہے کہ دیکھو بیچارے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, مصلحت کا شکار ہو گیا ہے. حالانکہ کئی سالوں سے تیار شدہ فتنوں کو نیست و نابود کر ڈالا اور تم کہتے ہو کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, مصلحت کا شکار ہیں. اس سے بھی زیادہ بری بات کہ کہتے ہیں کہ تبدیل ہو گیا ہے, ظلم کا دفاع کر رہا ہے. آخر الزمان میں فتنے بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے جائیں گے, بہت زیادہ پیچیدہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو مضلات فتن سے دوچار نہ کرے, وہ فتنے جو آپ کو چکرا کر رکھ دیں کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے. ایسے میں کیا ہوگا کہ جب آپ کامیابی کی منزل کے قریب پہنچنے والے ہوں گے اچانک وہ تلوار جو باطل کے خلاف چلا رہے ہوں گے حق کے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی.